Tvam tvabjana bringarisho rojakosha. Durga shito nirjata shatta sapatna. Bhungshe vayogan purushati rishtan. Vimukta sangha prakritim bhajasva. Tvam tvabjana bringri saroja kosha. Durga shrito nirjate shatta sapatna. Bhungshveva bhogan purushati dishtan. Vimukta sangha prakritim bhajasva. Tvam, tum swayam, tu, tab, abjanabha, जिनके नाभि कमल के फूल के समान है, अंग्री चरण, सरोजा कमल, कोशा मुंह, दुर्गा किला, आश्रिता शरणागत, निर्जीता विजीता, षट सपत्ना छह शत्रु, मतलब मन और पांच इंद्रियां, भुंक्षा भोग करो, इह इस जगत में, भोगान भोग वस्तुएं, पुरुषा परम पुरुष द्वारा, अतिदिष्टान विशेषतया आदेशित, विमुक्ता मुक्त हुआ, संगा भौतिक लगाव से, प्रकृतिम स्वाभाविक स्थिति, भजस्व भोग करो। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे प्रियव्रत, कमलनाभ ईश्वर के चरण कमल के कोश में शरण लेकर छह ज्ञान इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तुम भौतिक सुख भोग को स्वीकार करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष रूप से ऐसा करने के लिए आज्ञा दी है। इस तरह तुम भौतिक सुख से, भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकोगे और अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहते हुए भगवान की आज्ञाएं पूरी कर सकोगे। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में तीन प्रकार के प्राणी हैं। जो अत्यधिक इंद्रिय भोग करने का प्रयास कर रहे हैं उनको कर्मी कहते हैं। इनसे ऊपर ज्ञानी हैं, जो इंद्रियों की वासनाओं को रोकने का यत्न करते हैं। इनसे भी ऊपर योगी है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, किंतु इनमें से कोई भी दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं है। केवल भक्त, जो ऊपर लिखे तीनों में से किसी प्रकार के नहीं हैं, दिव्य होते हैं। भगवद्गीता में व्याख्या की गई है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समितायतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप में मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, किसी भी स्थिति में गिरते नहीं हैं, वह त्रिगुणमय माया को पार करके ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी प्रियव्रत को गृहस्थ जीवन नहीं, बल्कि भगवान के चरणों के दुर्ग के भीतर अब्ज नाभांग्री सरोज शरण लेने का आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। जब भौरा कमल की कली के क्षेत्र में घुसकर मधुपान करता है तो कमल की पंखुड़ियों से भली भांति रक्षित होता है, तो सूर्य प्रकाश और अन्य बाहरी कारण प्रभावित नहीं कर पाते। इसी प्रकार भगवान के चरण कमल में शरण लेने वाले को भय नहीं सताता। श्रीमद् भागवत में कहा गया, समाश्रिताये पदपल्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद्विपदम नतेषाम। इसका अनुवाद है, जिसने भगवान के चरण कमल में शरण ग्रहण कर ली है उसके लिए प्रत्येक वस्तु सरल हो जाती है। यहाँ तक कि भवसागर को पार करना उसके लिए ऐसे हो जाता है जैसे गाय के बछड़े के पैरों में रहने वाले पानी को पार करना हो, बहुत सरल हो जाता है। ऐसे भक्त के लिए उस स्थान में जहाँ प्रतिपद पर बाधा होती है रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारा वास्तविक कर्तव्य है भगवान की आज्ञा का पालन करना। यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ हैं चाहे हम स्वर्ग में रहें या नरक में रहें हमेशा सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर प्रकृतिम भजस्व ये शब्द बहुत सार्थक है। प्रकृतिम का अर्थ है किसी को स्वाभाविक स्थिति। प्रत्येक जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है कि भगवान का चिरंतन दास है। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रिय व्रत को आदेश दिया अपनी मूल स्थिति में भगवान के चिरंतन दास के रूप में बने रहो। यदि तुम भगवान की आज्ञा पालन करते हो तो भौतिक भोग के बीच में रहते हुए भी नहीं गिरोगे। कर्मफलों से प्राप्त होने वाली भुक्ति भगवान द्वारा प्राप्त की भुक्ति से अलग होती है। कभी कभी भक्ति बहुत परम ऐश्वर्यशाली हो जाते हैं किंतु भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वैसे किसी पद को स्वीकार करते हैं। अतः भक्त भुक्ति से प्रभावित नहीं होता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तजन श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार संसार भर में उपदेश दे रहे हैं। उनकी अनेक कर्मियों से भी भेंट होती है किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से विषय तरंगों से कभी प्रभावित नहीं होते। भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त है। चैतन्य चरितामृत 7वें अध्याय में मध्य लीला में बताया गया है, कबु न बाधिबे तोमार विषय तरंग पुनरपि ऐठाई पाइबे मोर संग। ऐसा एक अनिष्ट भक्त जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विश्वभर में उपदेश देता है उसको विषय तरंग नहीं सताते, उल्टे वो कालक्रम के साथ चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण में वापस जाता है और इस प्रकार उनसे उनकी शाश्वत संगति बनी रहती है। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवंश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस श्रावण के महीने में यहाँ पर वृंदावन धाम में हैं। वृंदावन धाम चिंतामणि धाम है और यहाँ पर आने से आध्यात्मिक प्रगति करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी की कृपा से भरा हुआ है। इस धाम में आने से भक्ति में प्रगति करना बहुत आसान हो जाता है। हमें जानना चाहिए कि चाहे हम एक दिन के लिए आए या एक महीने के लिए या हम यहाँ पर परमानेंट रह रहे हों, हमें जानना चाहिए कि ये हर एक क्षण जो धाम में है वो बहुत मूल्यवान है। हर एक सेकंड जो हम धाम में बिता रहे हैं उसमें हम बहुत प्रगति कर सकते हैं अगर हम अच्छा उपयोग करें, और बहुत हमारा पतन भी हो सकता है अगर हम अपराध कर बैठते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें इस धाम में एक भिक्षुक के रूप में रहना है, एक भिखारी के रूप में। हम यहाँ पर श्रीमती राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर श्रील प्रभुपाद और भक्तों से कृपा मांगने के लिए आए हैं कि हमें कृष्ण प्रेम मिल सके, हमें राधा और कृष्ण के चरणों में आसक्ति जागृत हो, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हर क्षण हमारी चेतना इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि मुझे हर क्षण या तो नाम स्मरण करना है या भगवान की कथा सुननी है या भगवान की कोई सेवा करनी है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं इसको अव्यर्थ कालम। एक भक्त का लक्षण है कि वो एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहता। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि एक क्षण भी अगर आपने खो दिया है तो वो लाखों रुपए देकर भी वापस प्राप्त नहीं हो सकता। तो पैसा जब खो जाता है तो दुख होता है, लेकिन पैसा तो वापस मिल सकता है लेकिन समय वापस नहीं आ सकता। जैसे आज 31 जुलाई 2017 है, अभी दर्शन आरती गुरु पूजा के बाद 7:45 से 8 बजे तक 15 मिनट समय था, तो उस समय आपने क्या किया आप सोचिए। अगर आप जप कर रहे थे या भगवान का दर्शन कर रहे थे तो बहुत अच्छा है, या 15 मिनट में स्पिरिचुअल प्रजल्प कर रहे थे, थोड़ा इधर उधर की बातें। एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं होना है, भगवान के संपर्क, क्योंकि ये जीवन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, और एक साल का मतलब है 365 दिन, और एक दिन का मतलब है 24 घंटे, और एक घंटे का मतलब है 3600 सेकेंड। तो एक एक सेकेंड बीत रहा है और हमारी मृत्यु करीब आ रही। एक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक भक्त ने बहुत अच्छा मैसेज भेजा कि यहाँ पर व्यक्ति अपने दौलत गिनने में कितना आनंद लगते हैं, तो आज मेरा इतना था, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, और भगवान श्री कृष्ण ऊपर गिनते हैं तुम्हारी सांसें कितनी थी अब कम हो गई, कम हो गई। वी आर कमिंग क्लोज टू डेथ। हर क्षण यही सोचते रहिए कि आज हो सकता है मेरा आखिरी दिन हो, तो आपका जब बहुत अच्छा होगा। दूसरे कोई विचार आएंगे ही नहीं, मेरा पॉकेट चोरी हो गया, कोई बात नहीं, आज तो आखिरी दिन है, मेरे बाद में ज़रूरत ही नहीं है। किसी ने बुरे शब्द बोल दिए, कोई बात नहीं, आज आखिरी दिन है। प्रसादम नहीं मिला, कोई बात नहीं, आज आखिरी दिन है। लेकिन जब भागवत पढ़ना जरूरी है, आज आखिरी दिन में ज़्यादा पढ़ना है। महाराज कुलशेखर इसलिए प्रार्थना करते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंजरंतम अद्यैव मे विशत मानस राज हंस प्राण प्रणाय समये कफवात पित्त कंठावरोधन स्मरणम कुत। इस समय अब मेरा मन भगवान के चरणों में लग जाए, और वही चीज़ आज के श्लोक में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं प्रिय व्रत को कि अपने मन को भगवान के चरण के कमल में लगाए। भगवान के चरणों की तुलना एक कमल से की गई है, और हमारा मन उस भंवरे के समान से, भंवरा फूल के अंदर प्रवेश करता है, सुरक्षित रहता है, वैसे भगवान के चरणों में मन लगाए। सततम 24 घंटे भगवान के चरणों का ध्यान कर। महाराज कुलशेखर बोलते हैं अभी इस समय प्राण त्याग देना अच्छा है, क्योंकि अभी मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, पता नहीं बाद में जब बुढ़ापा आएगा तो एक्चुअली बुढ़ापे के समय शरीर में इतनी बीमारियाँ होती हैं और पूरा शरीर अवरुद्ध हो जाता है, वात पित्त कफ सब डिस्टर्ब होते हैं, उस समय भगवान का स्मरण करना शायद संभव नहीं होगा। इसलिए अभी जब मेरा स्वास्थ्य अच्छा है मैं अभी अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हूँ, भगवान को याद करती हूँ। तो आज के श्लोक में जो बताया गया वो महाराज प्रियव्रत के लिए बताया है, हम सबके लिए बताया है कि ब्रह्मा जी हम सबके गुरु हैं। हमारी परंपरा ये ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है, इसमें श्री ब्रह्मा जी प्रथम गुरु हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने ज्ञान पहले ब्रह्मा जी को दिया। इनफैक्ट ये श्रीमद् भागवत जो हम पढ़ते हैं इसके 18,000 श्लोक है, लेकिन इसका मूल है चतुश्लोकी भागवत जो 4 श्लोक हैं दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय, जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी को शॉर्ट में पूरा भागवत बता रहे, 4 श्लोक। तो ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं यहाँ पर और सार तत्व बता रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है भौतिक दुनिया में, तो गुरु और वैष्णव हमें संक्षिप्त में बताते, नहीं तो आप 18 पुराण पढ़ने बैठे, 108 उपनिषद, 18 पुराण 108 उपनिषद, एक एक साल भी लगे तो हरे कृष्ण कितने साल हो गए, 126 साल हो गए है ना, पूरा नहीं पढ़ पाए। 4 वेद, इतिहास, जैसे प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने जो बुक्स दिए हैं उसमें सार दे दिया, ये जानते हुए कि कलयुग में मंद सुमंद मतयोर मंद भाग्य उपाधृत, लोगों की बुद्धि कमज़ोर है, स्मरण शक्ति कमज़ोर है। पहले ज़माने में लोग एक बार श्लोक सुनते थे बस उनको याद हो जाता था, अभी यहाँ 4 डिवोटीज ने श्लोक गाया, मैंने भी गाया, अभी कोई बोले बोर्ड के मत देखिए श्लोक बोलिए तो बोलो वृंदावन विहारी प्रभु श्लोक बोलिए, पहला अक्षर भी शायद याद होगा है ना, वो देख के याद होगा है ना थोड़ा, क्योंकि हमारी मेमोरी कितनी कमज़ोर है, हम लोग नोट्स निकालते हैं फिर नोटबुक कहाँ रखा है वो पता नहीं चला। तो हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ हम हेल्पलेस हैं, सिचुएशन ही ऐसी है और मन डिस्टर्ब रहते हैं कलयुग में। हर एक भक्त के अगर वो परमहंस नहीं हैं, हंस है परमहंस नहीं है, तो मन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है। अभी भी आप भागवत में बैठे हो कुछ ना कुछ विचार पैरेलल चल ही रहोगा, नहीं अपने अगर आप गृहस्थ हैं तो जॉब के बारे में, बच्चों के बारे में, या पति के बारे में, पत्नी के बारे में, या ब्रह्मचारी हैं तो लॉकर के बारे में, कल रात को स्वीट रखा था वो लॉकर में अभी तक है कि नहीं, वो टेंपल अथॉरिटी ने क्या बोल दिया मुझे, ऐसे कुछ ना कुछ माइंड को डिस्टर्ब रहता है, यह है। इसमें इसको किसी को दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी है कलयुग की, देश देश में लड़ाई है, घर घर में लड़ाई है, एक ही घर में चाचा और भतीजे में लड़ाई है, भाई और भाई में लड़ाई है, लेकिन अगर हमारी चेतना भगवान के चरणों में लगी है, जो आज के श्लोक बताए गए, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं ये भागवत से, समाशिताय पद प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम 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 यद विपदम न तेषम, कि ये भौतिक जगत जो है ये पदम पदम यद विपदम, हर स्टेप पे कोई ना कोई विपत्ति है, हर स्टेप पे विपत्ति है, कुछ ना कुछ एंग्जाइटी है, चिंता ही रहती है। आपको कहीं जाना है, अगर आपके पास अपनी कार है तो कार का मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, कार पार्किंग कहाँ की है वो सोचना पड़ता है, या वृंदावन में पार्किंग मिलना ही मुश्किल है, फिर कार को चलाने में भी प्रॉब्लम है, फिर कार नहीं है अगर आपको बस से जाना है तो और भी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ विपत्ति है। तो यहाँ पे भागवत में लिखा है कि पदम पदम विपदम, ये तो छोटी विपत्ति होगी और बड़ी विपत्ति। कल मुझे एक बेंगलोर से फ़ोन आया एक डिवोटी का कि उनके बेटे, इसका नाम भी गोवर्धन, ब्रज में जन्म हुआ, वो बेंगलोर में, इतने छोटे 4 साल का बच्चा ICU में है, जीवन खतरे में है। जनरली हम सोचते हैं कि ICU में खाली 50 के बाद या 70 के बाद लोग जाते हैं, ICU where I can see you, है ना, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 साल का बालक, उसका MRI टेस्ट लिया जा रहा है, और वो मेरे को बोले थे आप प्रार्थना करो, तो क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट भगवान की कृपा पे निर्भर रहे। लेकिन ये सारे विपत्ति का सागर वो बोल रहे हैं कितना बन जाता है, वत्स पदम, जो गाय के बछड़े, कई बार हम देखते हैं वृंदावन में गाय चल रहे हैं और कुछ बछड़े हैं, बछड़ों के पैरों के निशान कीचड़ दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ पर कुछ जल है, वो पानी को पार करना कितना मुश्किल है, भी इतना था छोटा सा होगा बछड़े के पैर का निशान, इसको पार करने के लिए प्लान नहीं करना है कि पहले हाँ कैसे जंप लगाएंगे, बड़ा आसान है। तो विशाल भवसागर इतना छोटा बन जाता है अगर हम श्याम सुंदर के चरणों का आश्रय लेते। आज जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये भक्ति का एसेंस है, ये सार है, बस ये अगर हम समझ जाएं, इसको पालन करें तो हमारा बेड़ा पार है। वो क्या है, भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, बस भगवान के चरणों में मन लगा, फिक्स्ड मैया सक्त मना पार्थ, जस मेरे चरणों का ध्यान कर। गीता में वही बात भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्त, हमेशा मेरे चरणों का चिंतन करो। और कलयुग में भगवान के चिंतन करने का प्रैक्टिकल तरीका है उनका नाम लेना। श्री कृष्ण भगवान जो गीता में बोलते हैं मन मना भव मद भक्त, उसी को दूसरी भाषा में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कीर्तनीय सदा हरि। भगवान गीता में बोलते हैं कि मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। और वही बात चैतन्य महाप्रभु दूसरे रूप में बोलते हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, इसीलिए अर्जुन को पता था कि मुझे क्या करना है, वो पूछ सकते थे। लेकिन हमारे सामने शायद भगवान प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं है, लेकिन अपने नाम के रूप में, आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे मंदिर में हो, या ICU में हो, हो सकता है कि आप किसी को मिलने जा रहे हो, या आप किसी व्हीकल में कार में ट्रेवल कर रहे हो, बस भगवान का नाम ले सकते। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जब कोई सच्चा भक्त भगवान का नाम लेता है तो वहाँ पर वृंदावन धाम प्रकट हो जाता है, तो वृंदावन धाम वहाँ पर प्रकट है जहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन। चैतन्य चरितामृत में कहानी आती है कि एक भक्त हैं जिनका नाम था सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय ये बंगाल के रहने वाले थे और उस समय नवाब हुसैन शाह जो बंगाल के राजा थे, महाप्रभु के समय बंगाल के राजा का नाम था नवाब हुसैन शाह बादशाह अलाउद्दीन बदमाश, ये लास्ट नाम मैंने दिया उसको। तो ये जो राजा था इतना क्रूर था, ये वही था जो कृष्ण लीला में जरासंध था, इसने बहुत सारे पाप किए थे, अपराध किए थे, लेकिन बचपन में वो गरीब था राजा बनने से पहले। तो सुबुद्धि राय कि यहाँ पर वो नौकरी करता था, सुबुद्धि राय ने उसको काम दिया था कि यहाँ पे तुमको गड्ढा खोदना है, तो गड्ढा खोदता था। एक दिन क्या वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, जैसे कोई नौकर ठीक से काम नहीं करता तो मालिक उसको डांटते हैं, तो सुबुद्धि राय ने हाथ में एक चाबुक लेके उसको ऐसे एक दो बार पीट दिया, ए ठीक से करो ऐसे, उसके कारण उसके पीठ पे वो निशान आ गए। ये बचपन की बात, फिर वो बड़े हो गए, वो नवाब बन गए, उनका विवाह हो गया। तो एक बार विवाह के बाद उनके पत्नी ने देखा कि इनके पीठ के ऊपर ये निशान कहाँ से आए, पूछा है निशान कहाँ से आए, मेरे को सुबुद्धि राय ने बचपन में मारा था। हाँ उसकी हिम्मत आपको मारा था, अब आप नवाब हो, अब उसको मृत्यु दंड दो, उसको सजा दी जानी चाहिए। बोला नहीं नहीं उसकी ज़्यादा गलती नहीं थी, उसने मुझे प्रेम से मारा था क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा था इसलिए, नहीं कब मृत्यु दंड देना चाहिए। और नवाब भी वश में थे, घर में रहना है तो यू नो उनको सुनना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। तो नवाब थोड़ा सा घबरा गए, बोले क्या सजा दी जाए, मृत्यु दंड तो नहीं दे सकते। ठीक है इसको मुसलमान बना दो। उस जमाने में ऐसे बहुत आसान था, एक उनका एक बर्तन होता है एक जो लेकर घूमते हैं और किसी के ऊपर डाल दिया तो बस मुसलमान भव बस समझे, यहाँ पे फेंक दिया। और यहाँ तक कि ब्राह्मण लोग फिर उनको घर में आने नहीं देते। सुबुद्धि राय कहीं पर गए कोई सभा में, सब बोले नहीं 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 आपको अलाउड नहीं है, क्यों आप मुसलमान हो गए। मेरा क्या दोष है, मैं जा रहा था किसी ने पानी फेंक दिया बस। तो फिर अब उन्होंने पूछा कि अब मेरे को वापस सभा में आने के लिए क्या करना होगा। बोले आपको प्रायश्चित करना होगा। तो प्रायश्चित क्या प्रायश्चित करें, एक ने बोला हाँ आप क्या करो गरम गरम घी पी लो, उससे क्या होगा उससे मृत्यु हो जाएगी, फिर अगला जन्म हिंदू परिवार में मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ा लंबा तरीका लग रहा है, है ना, ये तो मुश्किल है। तो उन्होंने फिर और उनको किसी ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु यहीं पर हैं आप उनसे मिलो। महाप्रभु के पास गए हाथ जोड़ के, भी मेरे से गलती हो गई। गलती क्या हो गई, किसी ने पानी फेंक दिया मैं वहाँ सहन कर लिया, तो मेरे को अब ब्राह्मणों की सभा से बहिष्कृत कर दिया गया और मुझे बोला कि प्रायश्चित करना होगा, अब बताओ क्या प्रायश्चित करूं। तो महाप्रभु बोले घी पीने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आजकल घी बहुत महंगा है घी पीने के लिए भी है ना अमीर हो, असली घी चाहिए। बहुत सारे घी हैं लेकिन असली घी तो अगर आप अपने आँखों से देख रहे हैं घी बन रहे वही असली घी है, नहीं तो गाय के दूध और घी के बर्तन के पीछे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए घी पीने की ज़रूरत नहीं है। आप वृंदावन में जाओ और बस जप करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबुद्धि राय सब घर बार छोड़ करके वृंदावन में आ गए और वृंदावन में रहकर भगवान का नाम स्मरण करने लगे। और वो साथ में वैष्णव की सेवा भी करते। भक्ति में प्रगति के लिए सिर्फ दो चीज़ें करना जरूरी है, एक तो भगवान का नाम लेना है और दूसरा भक्तों की सेवा करनी है, या मंदिर में सेवा कर रहे हैं वो भी भक्तों की सेवा। कुलीन ग्राम के वासियों ने महाप्रभु से यह प्रश्न पूछा कि हम बहुत पतित पामर गृहस्थ हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु उनको ये दो चीज़ें बताई कि आप वैष्णवों की सेवा करो और हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। उन्होंने पूछा कि वैष्णव केमो ने जानी ब, वैष्णव कौन है कैसे पता चलेगा। तो महाप्रभु ने क्या जवाब दिया किसी को याद है, महाप्रभु बोले जार मुखे शुने एक बार कृष्ण नाम, जिसके मुख से एक बार भी हरे कृष्ण सुनाई पड़ रहा है वो वैष्णव। अगले साल उन्होंने यही प्रश्न फिर से पूछा तो इस बार उनको जवाब मिला कि जो सतत 24 घंटे नाम ले रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जो 24 घंटे भगवान का नाम ले रहे वो परम वैष्णव। तीसरे साल फिर से यही प्रश्न पूछा, वैष्णव केमो ने छीनी ब, वैष्णव कैसे जानेंगे। तो इस बार जवाब मिला जिसको देखते ही दूसरे व्यक्ति हरे कृष्ण बोलने लगे वो परम वैष्णव। तो पहला आंसर है कनिष्ठ अधिकारी, इसने एक बार भी हरे कृष्ण बोल दिया वो भी वैष्णव है। मैं कहानी कई बार बताता हूँ कि मैं जब हैदराबाद में था, एक हम एक बगीचे में जप कर रहे थे और एक व्यक्ति बोले नहीं यहाँ नहीं बैठो आपको यहाँ बैठना मना है। मैंने बोला क्यों, आप भी आओ हमारे साथ आप भी हरे कृष्ण हरे राम बोलो। तो बोले नहीं मैं हरे कृष्ण हरे राम नहीं बोलूँगा। बोला क्या कारण क्या है, बोले हम मुस्लिम हैं। उसने अपना वी शेप आई कार्ड दिखाया है ना कि हम भी, तो हमने उसको बोला कि कोई बात नहीं आप अल्लाह अकबर बोलो। तो इतना खुश हो गया, बोले हाँ अल्लाह अकबर बोलूँगा लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलूँगा। फिर मैंने पूछा आप हरे कृष्ण क्यों नहीं बोलोगे, बोले क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका इस्कॉन का मंदिर है वहाँ पे लाउड स्पीकर लगा रहता है और दिन रात हरे कृष्ण हरे राम दिन रात आवाज़ आती है। इसलिए मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूँगा। अंत में हमने उसको प्रणाम किया, हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज, तो बहुत खुश हो गया, खुदा हाफिज बोलूँगा लेकिन हरे कृष्णा हरे राम नहीं बोलूँगा। तो इस तरह से कोई मजाक में भगवान का नाम लेता है उसको लाभ मिल जाता है, और कोई निंदा भी करता है। जगाई मदाई का उद्धार क्यों हो गया जल्दी, कि जगाई मदाई भगवान चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते थे, शराब पीते पीते वो निमाई का निंदा करते थे, उनके कारण उनका उद्धार हो गया। ऑफकोर्स मेरा मतलब ये नहीं है कि आप भी निंदा करो, है ना। जैसे कोई व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है, वो सिगरेट पीने की आदत छोड़ नहीं पाता, और एक साधु बोल रहे थे हरी नाम लो हरी नाम लो, तो साधु के पास जाते हैं, बोलते हैं मैं सिगरेट पी रहा हूँ क्या मैं हरी नाम ले सकता हूँ। साधु बोलते हैं क्यों नहीं, जरूर लीजिए। ये सुन के फिर एक भक्त जो पहले से ही जप करते थे बोले मैं जप करता हूँ क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ। तो बोले नहीं आप नहीं पी सकते, है ना, क्योंकि जो गुरु है आदेश देते हैं व्यक्ति के लेवल के अनुसार। तो जिस भी स्तर पर है, अभी ये व्यक्ति मजाक में भी हरे कृष्णा बोल रहा है निंदा में, हाँ, तो हम बोल रहे हैं इसको लाभ मिल रहा है। और हम जब जप करते हैं तो कोई डिवोटी बोलते हैं प्रभु जी ध्यान से करो आप ठीक नहीं कर रहे, फिर लगता है अरे इससे अच्छा नया बने रहना अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान चाहते हैं कि धीरे धीरे आप ऊंचे स्तर पर हो। अंततः तो अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो ऐसा जप होना चाहिए कि आप जप कर रहे हैं और आँखों में आंसू आ रहे हैं, भगवान के लिए पुकार रहे हैं। जब तक वो अवस्था नहीं आएगी तब तक आपको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। हो सकता है आप सीनियर बन जाएं, हो सकता है मंगल आरती का खीर मिल जाए और कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाए, लेकिन अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो वो अवस्था होनी चाहिए। इसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है जो मेरा फेवरेट भजन है। कबे हबे बोलो से दीना मार, अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बल हो बे हृदय संचार। इस भजन में बोल रहे हैं कबे हबे बोलो से दिन आमार, वो दिन मेरा कब आएगा जब मेरे अपराध घुची, मेरे सारे अपराध दूर हो जाएंगे और शुद्ध नाम में रुचि आ जाए। कौरिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण, पुलकित देह गदगद वचन। कभी कृष्ण नाम लेते लेते मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा, मेरे आंखों में आंसू आ जाए। तृणादि कही न कबे निज मानी, सहिष्णुता गुण वृक्ष सम आनी। कब मैं तृणाद अपनी सुनी छे न बन जाऊं। अभी ये श्लोक तो कई बार आपने सुना है, मैंने भी सुना है, लेकिन इसका पालन करना उस स्तर पर आने में कई वर्ष कई जन्म लग जाते। त्रिनाद अपि सुनी छे न, इस श्लोक को प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोलते थे, ये श्लोक हमारा सिद्ध प्रणाली मंत्र है। सिद्ध प्रणाली मंत्र मतलब जैसे कोई बाबा जी होते हैं बोलते हैं मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, वो मंत्र लो और आपको सिद्ध देह मालूम पड़ जाएगा। तो कई बार राधा कुंड में ऐसे बाबा जी होते हैं वो शॉर्टकट बताने का प्रयास करते हैं, और कई बार डिवोटीस वो गुमराह हो जाते हैं, उसमें सोचे चलो ये शॉर्टकट है, इसको हमने बहुत समय लग रहा है ये शॉर्टकट लेंगे। उनको पता नहीं है लेकिन वो शॉर्टकट कहाँ ले जा रहे हैं उनको, है ना, भगवान की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सबसे बड़ा शॉर्टकट दिया है, और सिद्ध प्रणाली मंत्र है त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। हमारे कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं वो कहते हैं कि इस मंत्र को गले में बांध के रखो कंठी माला की तरह, जैसे कंठी माला होती है गले में हमेशा रहती है, वैसे ये श्लोक को दिन में कम से कम 100 बार याद करना चाहिए। त्रिनादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णु अमानी न मान दिन कीर्तनीय सदा, त्रिनादपि सुनी चेन त्रिनादपि सुनी चेन, बार बार याद देना चाहिए, तभी हम भगवान के प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो समय ब्रज में भी रह रहे हैं हम, ब्रज में रहने का ही मतलब ये है कि त्रिनाद अपनी सुनी छे न रहे। इसलिए रूप गोस्वामी ने एक बार जीव गोस्वामी की परीक्षा ली। जब रूप गोस्वामी, आप जानते हैं जीव गोस्वामी जो है रूप गोस्वामी के शिष्य थे और उनके भतीजे भी थे, तो एक बार कोई बड़े पंडित आए थे रूप नारायण, और उन्हें ब्रज में भ्रमण कर रहे थे, सबको पराजित करते थे। वो इतने नम्र थे, एक सर्टिफिकेट लेके घूमते थे और सबको चैलेंज करते थे, आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, या तो आप मेरे को हराओ या आप हार मान लो, आप लिख दो मैं रूप नारायण से पराजित हो गया। तो इतने वो प्रभावशाली थे कि सब हार मान लेते उनसे। फिर वृंदावन में आए तो रूप सनातन का नाम उन्होंने सुना था कि रूप सनातन पूरे ब्रज में, पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। तो रूप सनातन के पास गए कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, आपको आए तो आप मुझे पराजित करो या तो आप साइन कर दो। रूप सनातन सोच रहे थे ये मूर्ख व्यक्ति है, अभिमानी है, इसे क्या शास्त्रार्थ करना, उतना टाइम वेस्ट करते थे, हम थोड़ा और भगवान का नाम भजन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूबल है। कल 30 जुलाई का दिन था, वो दिन 30 जुलाई 2017 मेरे लाइफ में फिर कभी नहीं आएगा, बस समय चला गया, एक दिन भी एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना। तो रूप सनातन सोचे क्या फर्क पड़ता है, चलो हमने हार मान ली, उन्होंने साइन कर दिया। फिर जीव गोस्वामी के पास है, देखो तुम्हारे गुरुजी ने भी साइन किया है, तुम भी शास्त्रार्थ करो या हार मान लो। तो जीव गोस्वामी सोचने लगे, उनको क्रोध आ गया, क्योंकि गुरु का अपमान है, वो अपने लिए नहीं कर रहे थे लेकिन उनके गुरु के आदर के, बोले मैं तुमको चैलेंज करता। उन्होंने फिर रूप नारायण के साथ शास्त्रार्थ किया और उनके धज्जियाँ उड़ा दी, मतलब पूरा क्लीन बोल्ड पराजित कर दिया। तो रूप नारायण पराजित हो गए। जब रूप गोस्वामी को समाचार मिला तो रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को बुलाया और बोले क्या किया तुमने, क्यों अपना समय इसमें वेस्ट किया, प्रसिद्धि के लिए, प्रतिष्ठा के लिए तुम ब्रज में रहने के योग्य नहीं हो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। और रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी की गलती नहीं थी, जीव गोस्वामी ने इसीलिए शास्त्रार्थ किया क्योंकि वो रूप गोस्वामी का मान बढ़ाना चाहते थे, लेकिन रूप गोस्वामी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको डांटा। और मैं होता या आप होते तो हम बोलते गुरु जी एक तो आपके लिए सेवा के लिए किया, ऊपर से लाठी पड़ रही है, अगली बार नहीं करूँगा मैं, ये ना ये तो अन्याय हो रहा है। लेकिन वो जीव गोस्वामी सोचते थे यस मेरी गलती है। वो दूर नंद घाट में चले गए और एक क्रोकोडाइल केव छोटी नीचे गुफा में रहते और बहुत ही कमज़ोर हो गए। कुछ ब्रजवासी कुछ आटा देते, वो आटा को पानी में मिक्स करके कुछ बॉल बना के खाते। एक दिन सनातन गोस्वामी वहाँ से गुजरे तो किसी ने बताया कि यहाँ पर एक भक्त रहते हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। देखा कौन, अरे ये तो जीव गोस्वामी, मेरे भाई के लड़के भतीजे। तो उनको पता चला कि रूप गोस्वामी की आज्ञा पे वो ब्रज छोड़ के चले गए। तुरंत सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को बुलाया और बोले कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में एक चीज़ है जो आप भूल रहे हो। तो रूप गोस्वामी बड़े प्रिय थे भगवान को, उनके अंदर अभिमान नहीं था। अभी कोई अभिमानी व्यक्ति हो तो बोलता है कि आप कौन हो, मैं कैसे भूल सकता हूँ भगवान की आज्ञाओं को, कुछ एक चीज़ आप भूल रहे हो। तो बोला आप बताओ क्या चीज़ें हैं। तो रूप गोस्वामी एक एक करके चीज़ें याद दिलाने लगे। फिर एक आया नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवा, जीव दया यस, जीवों पे दया करना और जीव गोस्वामी पे भी दया करना। फिर रूप गोस्वामी उनको वापस बुलवा लिया। और एक बार और भी फिर ऐसी घटना हुई। तो मैं कहानी क्यों बता रहा हूँ कि एक्चुअली जीव गोस्वामी तृणादपि सुनी चे न थी, इसीलिए रूप गोस्वामी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि मेरे शिष्य कितने नम्र हैं, कि ब्रज में रहना है तो वास्तव में ये भाव होना चाहिए कि मैं सबसे तुच्छ हूँ, मेरे से बढ़कर पतित कोई नहीं है। नहीं तो सिर्फ समझो हमने 25-30 लाख का फ्लैट खरीदी कर लिया तो हम ब्रजवासी नहीं हो जाते इससे। ये तो अच्छी चीज़ है यहाँ पर अगर जगह मिले रहने की, लेकिन ब्रज में रहना मतलब ब्रज का भाव होना चाहिए। ब्रज का भाव ये है कि मैं सबसे छोटा हूँ। जैसे उद्धव जी ब्रज में रहना चाहते थे। जब उद्धव ब्रज में आए, गोपियों के संदेश लेकर आए, कृष्ण का संदेश लेकर आए गोपियों के लिए, तो गोपियों की प्रेम की दशा देखकर वो इतने प्रभावित हो गए, वो सोचने लगे कि धन्य है ये गोपी। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल में नहीं प्राप्त करते, वो प्रेम गोपियों को प्राप्त हुए। ये कृष्ण के लिए उन्मत्त है, वो दिन रात कृष्ण को याद कर रहे हैं। एक गोपी दूसरी को बोल रही है कि हम कृष्ण को भूल ही नहीं पाते, भूल ही नहीं पाते, हमारा याद करना मुश्किल होता है, उनके लिए भूलना मुश्किल है। और उद्धव जी, अभी संसार में अगर कोई रो रहा है तो हम उसको सांत्वना करते हैं, उसके आंसुओं को पोंछते हैं कि आप रो मत, पैसे गुम हो गए मिल जाएंगे, कोई सगे संबंधी गुजर गए तो हम बोलते हैं आप दुख मत करो, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है, देही नोस्मिन यथा देहे। लेकिन अगर कोई कृष्ण के लिए रो रहा है तो क्या बोलेंगे उनको, और रो, रोते रहो, कृष्ण के लिए रोना ये जीवन का लक्ष्य है। इसलिए गौर गोविंद महाराज बोलते थे, उन्होंने भुवनेश्वर में एक मंदिर स्थापना की इस्कॉन का, बोलते थे ये जो मंदिर है, आई हैव ओपनड अ क्राइंग स्कूल टू टीच पीपल हाउ टू क्राई फॉर कृष्ण, ये मैंने एक स्कूल खोला है जिसमें सिखाया जाएगा कैसे कृष्ण के लिए रोना है। तो उद्धव जी मन ही मन सोचने लगे कि मुझे इस ब्रज गोपियों के चरणों की धूल मिले, और वो जानते थे ब्रज गोपियाँ तो धूल देंगे नहीं, तो उन्होंने सोचा मैं एक गुलमलता, एक घास की तिनका बन जाऊँ यहाँ पर, तो जो भी ब्रजवासी यहाँ से गुजरेंगे उनके चरण कमल की धूल मेरे सिर पर आएगी। तो और वो कुसुम सरोवर के पास वो स्थान है जहाँ पर उद्धव जी शाश्वत रूप से हैं गुलमलता के रूप में। तो ये भाव जो है त्रिनादपि सुनिश्चय, यही ब्रज में प्रवेश करने का भाव है, और इस भाव में आने में कई वर्ष लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। त्रिनादपि सुनिश्चय ना, त्रिनादपि सुनिश्चय, और बाकी सब चीज़ें हैं वो तो थोड़े अभ्यास के साथ सफलता मिल जाती है, जैसे अच्छा प्रवचन करना हो, अच्छा गाना हो, ये कलाएँ हम सीख लेते हैं, अच्छा भोग बनाना हो, अच्छा ड्रेसिंग करना हो, ये सब करने भी चाहिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेवा भगवान को स्वीकरणीय हो तो ये भाव आना चाहिए कि पतित पावन हेतु तव अवतार मोसम पतित प्रभु न पाई ब्या, मैं सबसे पतित हूँ, मैं गिरा हुआ। हर एक वैष्णव या वैष्णवी जो ब्रज में चल रहे हैं उनको मन ही मन साष्टांग दंडवत करना, फिजिकली नहीं कर सकते, फिजिकली सब प्रणाम किए तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, लेकिन मन ही मन जिसको भी देखो ये मेरे प्रभु है, ये प्रभु है, कोई माता जी है, कोई जानवर है, कोई पेड़ है जो ब्रज में है, चाहे वो एक दिन के लिए ब्रज में आया हो या परमानेंटली ब्रज में रह रहा हो, ये राधा और कृष्ण की कृपा के पात्र हैं, राधा और कृष्ण ने उनको यहाँ पर बुलाया है। मैं तो एक भिखारी हूँ, ये जो मेरे सामने गुजर रहे हैं, जो मेरे सामने चल रहे हैं, ये सब भगवान के पार्षद। इस भावना से अगर हम रहते हैं ब्रज में तब फिर हम वास्तव में राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। यानी गोस्वामी इस तरह से ब्रज में भ्रमण करते थे, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, वो सब जगह पे राधा और कृष्ण को ढूंढते थे, हे राधे ब्रज देवी, हे नंद सुन कहाँ पर हो आप, गोवर्धन के पास हो कि आप यमुना के पास में। इसे विरह का प्रेम सबसे ऊंचा प्रेम होता है, कि विरह के प्रेम में अपने आप नम्रता भी आ जाती। अगर मैं सोचता हूँ कि मैंने कृष्ण को प्राप्त कर लिया है तो अभिमान आ सकता है, लेकिन विरह का प्रेम है जैसे किसी के पास एक 10 लाख रुपए हैं और बाद में वो खो देता है तो कितना वो तरसता है उस धन को प्राप्त करने के लिए, ऐसे विरह का प्रेम है। कई बार भगवान अपने भक्त को थोड़ी कृपा दिखाते हैं और थोड़ा सा अनुभव दिखाते हैं और फिर और अनुभव के लिए बोलते हैं अभी संघर्ष होगा। जैसे भागवत के प्रथम स्कंद में नारद मुनि की कथा आती है, तो नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे और एक बार उनको भगवान के दर्शन हो गए ध्यान में, और फिर वो फिर से प्रयास कर रहे थे और फिर नहीं हो पाए। तो भगवान ने उनसे बताया कि मैं आपको बस अब आपको इस जन्म में ये प्राप्ति नहीं होगी, बस आपको सिर्फ आकर्षित करने के लिए मैंने ये आपको अनुभव दिलाया। जैसे इस दुनिया में कोई मिठाइयों की दुकान होती है, जैसे मान लो बादाम की बर्फ़ी यहाँ मिलती है, बादाम की बर्फ़ी है ना, मेरे बहुत फेवरेट है। तो बचपन में मैं जब हमारे घर के पास एक दुकान थी वहाँ पे बादाम की बर्फ़ी मिलती, तो पहली बार आप जाओगे तो आपको फ्री सैंपल मिलता है, फ्री थोड़ा सा फ्री, और आप टेस्ट करते हैं बहुत अच्छा है, और चाहिए, हाँ अभी आप कूपन लेके पैसे भर के लो। ऐसे ही पहले पहले भक्ति में भगवान कुछ हमें फ्री सैंपल देते हैं, फ्री थोड़ा टेस्ट आता है भागवत में जपा में। और फिर बाद में हमें और अगर प्रगति करनी है तो भक्ति साधना भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करें। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो इस विरह प्रेम का ही आस्वादन करते थे। कभी कभी तो वो अपने कमरे में होते थे और स्वरूप दामोदर रामानंद राय उनके साथ, स्वरूप दामोदर उनको गीत सुनाते थे, राधा कृष्ण के गीत, और राय रामानंद उनको कथा सुनाते थे। और जब रात के समय जब सब चले जाते थे तो महाप्रभु दरवाजे बंद करके अकेले होते थे और गोविंद अचानक सुबह उठे देखे तो भगवान गायब, दरवाजा तीनों दरवाजे बंद थे फिर भगवान गायब। वो सब जगह पर ढूंढने लगे कहाँ पर है महाप्रभु। वो सिंह द्वार के पास गए तो देखा वहाँ पर महाप्रभु लेटे हुए हैं, उनका पूरा शरीर अंदर चला गया, कूर्म का आकार जैसे हो गया। ऐसे ही कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र को देखते और समुद्र को देखकर उनको यमुना की याद आ जाती, और एक दिन अचानक वो यमुना जी में छलांग लगा ली और यमुना की लहरें इतनी, सॉरी यमुना नहीं है, समुद्र, समुद्र की लहरें इतनी तेज थी कि वो 25 किलोमीटर दूर कोणार्क पहुंच गए और सारे भक्त ढूंढ रहे हैं महाप्रभु कहाँ पर हैं, नरेंद्र सरोवर में नहीं, कहीं गुंडीचा में नहीं, जगन्नाथ मंदिर में नहीं, सिद्ध बकुल में नहीं, सब जगह ढूंढते ढूंढते अंत में एक भक्त बोले महाप्रभु अंतर्धान हैल, शायद अंतर्धान हो गए। इधर महाप्रभु समुद्र की लहरों से दूर पहुंच गए और वो भारी चेतना में नहीं थे और एक मछली पकड़ने वाला था, फिशरमैन, और उन्होंने देखा तो लगा उनको महाप्रभु का साइज बहुत बड़ा था, उनको लगा ये बड़ी मछली है, बहुत खुश हो गए, एक महीने का कोटा हो गया, एक बड़ी मछली पकड़ी। तो उन्होंने अपने जाल में महाप्रभु को पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा और स्पर्श किया तो स्पर्श करते ही उसको भगवान की कृपा मिली और वो गाने लगे हरी 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 हरी। आपकी आवाज़ से लगता है बहुत थके हुए हैं, आप जोर से बोलिए हरी 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 हरी। तो वो भगवान हरी का नाम लेने लगा, कृष्ण राम हरी, कृष्ण राम हरी, कृष्ण राम हरी, और उसको उसको डर लग गया, उसको लगा कि शायद मेरे शरीर में क्या आ गया, भूत आ गया। भूत मतलब कभी कभी कोई आत्मा होती उसको शरीर नहीं मिलता तो दूसरे शरीर में प्रवेश करते, तो डर गए और वो डर के मारे दौड़ते हुए गए एक ओझा को ढूंढने के लिए, ओझा जो मंत्र से निकालते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनको कृष्ण प्रेम मिल गया था लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था, जैसे किसी को असली धन मिल गया और वो सोच रहे कि कांच के टुकड़े हैं। इधर स्वरूप दामोदर ढूंढते ढूंढते गए महाप्रभु कहाँ हैं, महाप्रभु कहाँ हैं, और देखा वहाँ से सामने से वो फिशरमैन आ रहे और उसके मुँह से निकल रहे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। वो बिल्कुल भाव विवल एक्सटेसी में है और वो बस कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम 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 कृष्ण 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 बोल रहे हैं। एक बार जब प्रभुपाद जी धरती पर थे अमेरिका में, उन्होंने एक कहानी बताई थी भक्तों को 1968 में, और इतने प्रेम में प्रभुपाद बता रहे थे कि बोलते बोलते प्रभुपाद जी एकदम स्तब्ध हो गए, उनकी आँखों से आंसू आने लगे। अभी मैं बोलता हूँ या बोलते हैं तो हम तो दोहरा रहे हैं जो बुक्स में लिखा है, लेकिन प्रभुपाद या जो शुद्ध भक्त जब बोलते हैं कथा को तो उस लीला का अनुभव कर रहे होते हैं, उस लीला में प्रवेश कर रहे होते हैं। तो प्रभुपाद जी कथा में बताते हैं कि स्वरूप दामोदर उनको देखा और पूछा कह जालिया कौन दशा हाइला व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हो गया। वो बोला मैं हरी वहाँ पर मछली हरी पकड़ने गया हरी, और वहाँ पर हरी एक भूत हरी आ गया हरी हरी, आप हरी उधर हरी मत जाओ हरी 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 हरी। मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको ये भूत लग जाए हरी हरी, और आप भी मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे को भी भूत लग जाए हरी हरी हरी। कहाँ जा रहे हो हरी हरी, क्या समय हुआ हरी हरी। इस तरह वो हरी 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 बोल रहे थे। स्वरूप दामोदर को शंका हुई, उन्होंने बोला कि कौन क्या मिला आपको। बोला मैं मछली पकड़ने हरी रोज जाता हूँ हरी, लेकिन आज एक बड़ी मछली मिली, मुझे लगा बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही मैंने स्पर्श किया हरी वो भूत हरी मेरे अंदर आ गया हरी हरी। तो स्वरूप दामोदर बोले, वो उनको डाउट है, बोले भूत नहीं है वो, चैतन्य महाप्रभु होंगे। बोले नहीं, मैं चैतन्य महाप्रभु हरि को जानता हूँ, हरि और चैतन्य महाप्रभु तो बहुत अलग ही आकार के हैं, ये तो सफ़ेद रंग के हैं, उनका साइज बहुत बड़ा है। आप हरि उधर हरि मत जाओ, वो भूत हरि आपको हरि पकड़ लेगा, हरि हरि। तो बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं ओझा की तलाश में हूँ। जनरली रात के समय में मछली पकड़ने जाता हूँ, तो रात के समय भूत आते हैं। जनरली भूतों का जो है ना ऑपरेटिंग टाइम होता है वो रात के समय होता है, है ना, मैंने सुना है ऐसे, है ना, रात के समय। इसलिए मैं जब रात को जाता हूँ तो मैं नरसिंह प्रेयर बोलता हूँ, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाई। तो मैं नरसिंह प्रेयर बोलता हूँ तो भूत नहीं आते, लेकिन ये भूत हरी बड़ा विचित्र हरी है, नरसिंह प्रेयर बोलने पे हरी डबल आक्रमण करता है। इसलिए आप हरी उधर मत जाओ। तब स्वरूप दामोदर समझ गए, उन्होंने बोला इधर आओ पास में आओ, मैं भूत निकालने की विधि को जानता हूँ, पास में आओ। बहुत पास में ले आए, बायां हाथ सिर पर रखा और तीन थप्पड़ मारे, ठक ठक ठक, बोले भूत चला गया। तो थोड़ा होश में आए और फिर उनको साथ में लेकर गए और देखा महाप्रभु एकदम दिव्य अवस्था का, पूरा शरीर डबल साइज का हो गया और ये हड्डियों के बीच में ऐसे लटक रहे, यहाँ पर कोई मांस नहीं, और उनका पूरा शरीर सफ़ेद हो गया और आंखें आधी खुले हुए हैं और आवाज़ आ रही है गौं गौं गौं। सब स्वरूप दामोदर कुछ चिंता होने लगी, क्या करें भगवान, कैसे होश में लाए। कुछ डिवोटीज आए, उनके कपड़े से उनके बॉडी को पहुंचा, उसको नए कपड़े पहनाए, महाप्रभु को होश ही नहीं आ रहा। फिर भक्तों ने उच्च स्वर में कीर्तन शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अचानक महाप्रभु होश में आ गए और जोर से बोले हरि बोल हरि 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 बोल। और महाप्रभु बोलने लगे, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए, मैं तो यमुना में था, वहाँ पर राधा और कृष्ण की लीला हो रही थी और सब गोपियों के साथ मैं वहाँ पर लीला देख रहा था, आप क्यों मुझे दुख दे रहे हो, यहाँ क्यों ले आए? भक्तों ने बोला, पहले गंभीरा में चलो, बाद में बताएंगे। और फिर उनको समझाया गया। ऐसे महाप्रभु एक बार गोवर्धन पर्वत की तरफ दौड़े, कुछ मिट्टी का ढेला था, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो महाप्रभु को लगा कि ये गोवर्धन है। वो दौड़ने लगे, गिरिराज महाराज की जय, गाने लगे, हंता यमद्री अबला हरिदास वर्य, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य, पानीय वासरय कंदर कंदमूले। सुनने लगे, ये भागवत का श्लोक है जो राधा रानी बोल रही है गिरिराज की स्तुति में। हंता, अरे सुनो, अद्री, अद्री यानी पर्वत, ये पर्वत गिरिराज क्या है, हरिदास वर्य, ये हरि के भक्तों में श्रेष्ठ है। उद्धव जी भी हरिदास हैं, ब्रह्मा जी भी हरिदास हैं, लेकिन गोवर्धन है हरिदास वर्य, भगवान के दासों में सर्वश्रेष्ठ। क्यों? राम कृष्ण चरण, कृष्ण बलराम के चरणों का स्पर्श, और ये ग्वाल बालों को सब कुछ देता है जो आवश्यक है, अच्छे अच्छे फ्रूट्स, खेलने के लिए गुफाएं, गायों के लिए घास, अच्छे झरनों का पानी। और ये श्लोक बोलते हैं, भगवान दौड़ने लगे और गोविंद उनके पीछे जा रहे हैं, रमाई पंडित, नंदाई पंडित, ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी, भगवान आचार्य थोड़े लंगड़े थे, वो धीरे धीरे जा रहे थे। और महाप्रभु रोकने गए, महाप्रभु पहले तो हवा की गति से दौड़ रहे थे, फिर वहाँ जाने के बाद स्तब्ध हो गए और जमीन पर गिर पड़े। भक्तों ने देखा, कोई चांस ही नहीं है, भगवान को होश ही नहीं है, किसी ने पानी डाला तो भी होश नहीं। फिर भक्तों ने जब कीर्तन शुरू किया, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो उनको फिर होश आ गया। भगवान बोले, आज मुझे यहाँ क्यों ले आए, मैं तो वहाँ गोवर्धन के पास था, गोवर्धन में श्री कृष्ण भगवान ने अपनी मुरली बजाई, वेणु नाद सुनी आईल राधा ठाकुरानी, और वेणु की आवाज़ सुन के राधा रानी आई, और कृष्ण और राधा रानी वहाँ पर लीला कर रहे थे, मुझे फूल लाने के लिए भेजा गया, फिर आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? ये सब भक्त ने उनको समझाया। इतने में सीनियर डिवोटी आ गए, परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती। उनको देखकर भगवान बहुत अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया, पूछे, आप यहाँ क्यों आए? परमानंद पुरी ने जवाब दिया, तुम्हारा नृत्य देखी बारी आई ला, हम आपका नृत्य देखने आए। तो समय हो रहा है, लेकिन अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा जो प्रभुपाद जी आज तात्पर्य में बोल रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रख। गोपियों ने इस प्रेम से, कंस ने डर के मारे, किसी भी तरीके से कृष्ण का स्मरण हमेशा करते रहे। ऐसी भावना बनाइए कि सब जगह पे कृष्ण की याद रहे, फिर अंत समय भी कृष्ण अपने आप याद आएंगे। और यही जीवन की सफलता है, अंते नारायण स्मृति। अंत समय में भगवान राधा श्याम सुंदर आने चाहिए। वो कैसे होगा? दयाल निताई चैतन्य बोले नाचरे अमर। अगर गौर निताई की कृपा होगी तो भक्ति विनोद ठाकुर भजन में बोलते हैं, शेषे वृंदावने राधा श्यामेर पावे दर्शन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचरे अमर मन। अगर गौरांग और नित्यानंद का आश्रय लेते हैं तब अंत समय में राधा और कृष्ण का स्मरण हो सकता है। कंक्लूजन में भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जब हम जप करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे आज के पर्पट में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण के चरणों को आश्रय लेना चाहिए। कविराज गोस्वामी बोलते हैं, दुष्करम सुकरम भवेत, मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाता है। कैसे? चैतन्य महाप्रभु को याद करने से। और सुकरम दुष्करम भवेत, आसान से आसान कार्य भी मुश्किल हो जाता है। कैसे? चैतन्य महाप्रभु को भूल जाने से। तो भक्ति का सार है जो आज के श्लोक में बताया गया कि भगवान के चरणों को हमेशा याद करना। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तम न जातुचित। और उसका प्रैक्टिकल तरीका है, हमेशा जैसे एक छोटा बच्चा माँ को पुकारता है, इस भावना से पुकारना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी एक कहानी बताते हैं, कबू ना बादी बे तोमार विषय तरंग पुनरापि एठाई पाई बे मोर संग। ये कहानी किसको बताते हैं? ये कूर्म ब्राह्मण। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकलते हैं दक्षिण भारत के लिए तो कूर्म ब्राह्मण के घर में जाते हैं, और ये कूर्म ब्राह्मण उनको पैरों को धोते हैं, चरणामृत और प्रसाद खिलाते हैं। वो ब्राह्मण का नाम होता है कूर्म, मंदिर का नाम होता है कूर्म, और गांव का नाम होता है कूर्म, kurma@kurma.kurma, वह सिंपल आईडी है। और महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम के तकलीफों से तंग आ गया, मैं आपके साथ भ्रमण करना चाहता हूँ। आपको लगेगा महाप्रभु बोलेंगे बहुत जल्दी चलो चलो संन्यास लिस्ट में नाम डालो, नहीं, भगवान बोलते हैं नहीं, आप गृहस्थ रहो, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ रहो, जिस भी आश्रम में हो। महापुरुष को बोलते हैं सिर्फ एक ही चीज़ करो, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु है यह तारे देश। अब जिसको भी मिलते हो उसको कृष्ण भक्ति का उपदेश करो, और ऐसा करोगे तो क्या बोल रहे हैं भगवान आज के श्लोक में, तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं, कबू ना बादी बे तोमार विषय तरंग, विषय के जो डिफिकल्टीज हैं, इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हैं, वो आपके अंदर कभी नहीं आएंगे। और पुनरअपि मोरा संग पाई बे, और इसी स्थान पर आपको मेरा संग मिलेगा। मतलब किसी भी आश्रम में हम रहें, अगर हम ये फॉर्मूला स्वीकार करते हैं, गृहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले डाक, भगवान के नाम को अपने जीवन का केंद्र बनाने, तब हम जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकते। हरे कृष्ण।